नमस्कार श्रोताओं, छिंदवाड़ा वालेन से आपका दोस्त योगेश। आज का हमारा विषय है अतिथि विद्वानों द्वारा निरंतर आंदोलन किया जा रहा है, परंतु उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है, या फिर इसको लेकर क्या समस्याएं है सरकार के प्रति, और क्या अतिथि विद्वान अपनी मांगों को लेकर निरंतर सड़कों पर आ रहे हैं, परंतु अभी तक के चाहे बच्चों का भविष्य हो, चाहे अतिथियों की समस्याएं हो, आज तक युवाओं का भविष्य भी शिक्षकों के कारण अधूरा रहा है, साथ ही शिक्षक भी निरंतर अपने संघर्ष में सड़कों पर देखे जा रहे हैं। आज हमारे साथ सुरजीत सिंह गढ़वाल जी जुड़ी है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, जो अतिथि विद्वान नियमितकरण संघर्ष समिति मोर्चा के ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। सुरजीत सर, मोबाइल वाले पे स्वागत सर आपका।
जी जी, थैंक यू
सर। क्या देखते हैं अतिथि विद्वानों के कितने कितनी संख्या है पूरे प्रदेश में सर, जिन जो इसको लेकर एक मानक रखते हैं कि उनको अतिथि विद्वानों की नियुक्तियां को लेकर वे मोर्चा कर रहे हैं?
अतिथि विद्वानों की मध्य प्रदेश में पूरी संख्या है 4500 के लगभग है, जिसमें किराधिकारी ग्रंथपाल चार से नीचे ही है। हाँ, तो जिसमें ग्रंथपाल है, किराधिकारी है, तो हम लोग माननीय शिवराज सिंह जी से जो विपक्ष में जब थे, तो हमारा आंदोलन चल रहा था भोपाल में फाजानी पार्क में 2019 में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के लिए बोला था कि कमलनाथ जी, अतिथि विद्वानों की मांगे जायज है, इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो इनकी हाय आपकी सरकार को ले डूबेगी। और यही जो बोले कि अगर पद नहीं है तो पद बढ़ा लो, महाविद्यालय नहीं है महाविद्यालय खोल लो। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ही पहले 2017 में पीएफसी कराई थी, वो पीएफसी इतनी ज्यादा विवादित थी कि उसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और इनको बाहर बाहर के लोगों को ही नौकरी देने में अच्छा लगता है, जो कि मध्य प्रदेश के युवा जो अतिथि विद्वान है वो 20 से 25 साल की अनुभव रखते हैं और 50 से 55 साल का उम्र हो चुकी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बोला था जब विपक्ष में थे कि इस उम्र में ये कहां जाएंगे, इन्हें कौन नौकरी देगा। अब आप क्यों नहीं कर रहे हो इस चीज पे अमल, अब आप क्यों नहीं अतिथि विद्वानों को नौकरी दे रहे हो? अभी आपने 2500 पद निकाल दिए पीएफसी के, ये अतिथि विद्वान कहाँ जाएंगे? ऐसा भी नहीं है कि आपकी सरकार ने किया नहीं है। 2003 2005 2007 में एडॉक वालों को, आपाति वालों को, 89 डेज वालों को नियमित किया है, और भी बीजेपी शासित अन्य राज्यों में अतिथि विद्वानों को नियमित किया गया है, फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया जा सकता नियमित? ये तो समझ में ही नहीं आता है कि जब आप विपक्ष में रहते हो तो अतिथि विद्वान याद आते हो, जब आप सत्ता में आ जाते हो तो उन्हीं से ही आप दुश्मनी निकाल रहे हो, उन्हीं के फबों पे चढ़ के आपने सत्ता प्राप्त की थी। जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे फाजानी पार्क में, हमारे 40 अतिथि विद्वान 45 अतिथि विद्वान भगवान को प्यारे हो चुके हैं इस शोषणकारी नीति के कारण, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो ध्यान ही नहीं दे रहे, उनको तो फिर बाहरी राज्य वालों को नौकरी देना है। और अब गरीब की बद्दुआ कब्र तक पीछा करती है, ये मैं फिर कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अतिथि विद्वानों को पहले भला करो, उसके बाद आप पीएफसी कराओ, कुछ भी कराओ, हमें पीएफसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आपने अपना वचन दिया था कि ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ये ऐसे लोग नहीं है, कहीं से भी उठाया बना दिया गया, ये पूरी इनकी पूरी पारदर्शिता के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है, अब आप अपने वचन से क्यों मुकर रहे हो? क्यों नहीं अतिथि विद्वानों को नियमित किया जा रहा है? क्या वो क्या परेशानी आ रही है? जब दूसरे राज्य वाले कर सकते हैं तो आपको तो पहले करना चाहिए। पूरी यूजीसी की योग्यताएं पूरी करते हैं, पीआईटी नेट स्लेट है, अनुभव रखते हैं इससे ज्यादा, और आपके मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, या फिर आपको जो कोचिंग वालों के द्वारा जो प्रायोजित किए जाते हैं उन्हीं के द्वारा आप क्या नाम है नौकरी देना चाहते हो जो पीएससी वालों के लिए, कि पीएससी करा दी, इस उम्र में कौन पीएससी दे पाएगा? जब आप ये 10 साल के प्रैक्टिस में जब वकील जज बन सकते हैं तो अतिथि विद्वान क्यों नहीं परमानेंट हो सकते? एक बार तो आप बोलो ना, हम इतनी बार टाइम ले चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें टाइम ही नहीं दे रहे हैं मिलने के लिए। आज 70 दिन हो चुके हैं ग्वालियर में आंदोलन करते करते, माननीय सिंधिया जी ने बोला था कि हम इनकी ढाल बनेंगे, तलवार बनेंगे, और कमलनाथ जी इनका नियमितकरण करो और नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे। कहाँ गए माननीय सिंधिया जी? वो तो यहाँ से चुन के राजकुमार से चुन के वहां पर पहुंच गए, केंद्र में पहुंच गए, मंत्री बन गए जाके। अतिथि विद्वान अभी भी यहाँ सड़कों पर ही बैठे हुए हैं, उनके महल के सामने फूलबाग चौराहे पर।
जी सर, सर जो भी हमारे आंदोलन के दौरान हमारे जो अतिथि विद्वान हैं, 45 से 40 से अधिक आपने संख्या गिनवाई, उनके लिए मेरी संवेदनाएं हैं। सर मेरा अगला सवाल इसी को लेकर है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार के दोनों पक्षकार क्या अतिथि विद्वानों के लिए क्या कोई सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? क्या जो भी सत्ता में आता है वो विपक्ष वाला इनको लेकर आश्वासन दे देता है? सर
जो दोनों सरकार एक जैसी ही है वो तो फुटबॉल की तरह खेलती है अतिथि विद्वानों से, फुटबॉल बना रखा है। जब विपक्ष में रहते हैं तो इतना लाड़ प्यार आता है इनको क्या उससे ज्यादा इनका कोई, जैसे हम उनके छोटे भाई है, कोई घर के सदस्य है। लेकिन जैसे ही सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो जैसे उनका दुश्मन हो जाता है अतिथि विद्वान। अच्छी तरीके से बात करेंगे और लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन जैसे ही अतिथि विद्वानों को नाम सुना तो एकदम चेहरे का कलर एकदम फीका हो जाता है। अरे आप बात तो बताओ, हम तो ये कह रहे हैं आप तो हमें दो में से एक काम कर दो। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से हम बार बार यही कह रहे हैं, या तो हमें इच्छा मृत्यु दे दो या फिर हमारा निमित्तीकरण कर दो। क्योंकि हमें ये पता है सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये तो फिर जब सत्ता में रहते विपक्ष में रहते तब भावनाओं से खेलते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो फिर आप देखो फिर सुनते ही नहीं है, किसी की भी नहीं सुनते हैं। कितने सारे शोषणकारी व्यवस्था के शिकार हो चुके हैं अतिथि विद्वान, फिर अब हम कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे जाके है? उनके परिवारों को हाल देखो जाके, कमाने वाला कौन है? आज हमें जो 1500 रुपए वर्किंग डे में मिलते हैं, ना कि छुट्टी के मिलते हैं, 1500 रुपए में जो 30,000, 28,000, 33,000 इस तरीके से पड़ता है महीने का जाके, उसमें किसका खर्चा चलता है? आज आप देखो महंगाई कितनी हो रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही तो कहना चाह रहे थे कि पहले आप हमारा अतिथिदानों का निमित्तीकरण करो और उसके बाद आप PSC कराओ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अपने कहने के बाद भी मुकर गए और PSC का एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया। ये कहाँ का न्याय हुआ? क्या ये ना, ना, ये मैं 2023 आ गई है, 8 महीने बाद चुनाव है। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये चुनाव जीत जाए BJP तो मेरे को आप खोद गड्ढा गाड़ देना। BJP अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के रहे तो चुनाव नहीं जीत पाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि अतिथि विद्वानों की बददुआएं कब्र तक पीछा करेंगी, कब्र तक। मैं इतना परेशान हो गया हूँ, इतना परेशान हो गया हूँ। 20 साल से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हो ग्वालियर में 2.5 डिग्री टेम्परेचर है और अभी भी भगवान सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए, कोहरा पड़ रहा है और इस समय ऐसी ठंड में महिलाएं अपने बच्चों को लिए हुए बैठी हुई हैं। यही संवेदना देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे जब दिसंबर 2019 में हमारा भोपाल में फाजानी पार्क में आंदोलन चल रहा था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक यहाँ पर ना माननीय सिंधिया जी ने, ना उनका कोई अधिकारी, ना माननीय मंत्री जी, सिर्फ एक ही रेट लगाए रहते हम PSC कराएंगे। क्योंकि जो भी अधिकारी है ना, जो कोई भी वहां पर उच्च शिक्षा विभाग में जो अधिकारी है, वो लोग सिर्फ अदर स्टेटों के, कोई बिहार का है कोई यूपी का है, वो लोग चाहते ही है कि यूपी और बिहार के यहाँ पे नौकरी करें आके, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाए। फिर क्या होगा? फिर चंबल में डकैत पैदा होंगे जाके, फिर वही चीज होगी जाके, और क्या होगा? मरता तो क्या नहीं करता, यही फिर अपनानी पड़ेगी। यही नेता लोग ये डकैत बनवाते हैं, क्योंकि यही पहले भी हुआ था यही सब चीजें।
जी सर, मेरा अगला सवाल यही है कि
जी
क्या सर सरकार हमारे जो बच्चों के मामा जी है, जो वे कहते भी है, और क्या इसको लेकर अतिथि विद्वान की नियुक्ति हो या फिर स्कूल कॉलेजों में जो बच्चे जाते हैं उनको इन शिक्षकों का जो ज्ञान हो, ना ही इनकी अतिथि विद्वानों के द्वारा परीक्षा भी बाधित हो रही है इन मोर्चों के कारण, और ना ही बच्चों की पढ़ाई हो रही है। सर इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो बच्चों का हो रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं सर इसको?
देखो बच्चों का नुकसान तो इस तरीके से हो रहा है सर, क्योंकि जब अतिथि विद्वान आप ये देखो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और पता नहीं चलता, हाँ, और आप ये देखो ज्यादातर सब्जेक्टों के टीचर नहीं है वहां पर, पोस्ट ही नहीं है उनकी, और अतिथि विद्वान जब पढ़ाने के लिए जाते हैं उनका भविष्य का पता नहीं है कि आज नौकरी, अभी आप ये देखो बैकडोर एंट्री से लेटर निकाले जा रहे हैं, अभी वहां पर ये क्या नाम उमरिया में एक मैडम अभी फॉलन आउट हुई है, कल एक सर का जो लेटर निकला मतलब उनका उसके साथ में नहीं निकला कि ट्रांसफर लेटर अभी भी निकलते जा रहे हैं और अतिथि विद्वान फॉलन आउट होते जा रहे हैं। उनका ये रहता है कि आपकी अतिथि विद्वानों की जो नियुक्ति रहती है उनका ये है कि अगर कोई भी परमानेंट टीचर आपकी जगह पे आ जाता है तो आपकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो आप ये बताओ बच्चों को कहाँ से पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनका भविष्य खुद ही सुरक्षित नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि हमारा हम अभी दो घंटे बाद यहाँ पे कॉलेज में रहेंगे या नहीं रहेंगे। सरकार तानाशाही हो चुकी है, उन्हें कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि उनको 18-20 साल हो गए हैं सरकार चलाते चलाते, इसलिए उन्हें अभी कोई भी नहीं दिख रहा है, वो तो एकदम आताताई हो गए हैं। अतिथि विद्वान क्या करे जाके, पहले अपना भविष्य तो देखें, पढ़ाई तो बच्चों को तो जब पढ़ा पाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे आंदोलन में बैठे हुए तो बच्चों की पढ़ाई का तो नुकसान है ही। अभी आप ये देखो सेमेस्टर चल रहे हैं, एमए के चल रहे हैं, पीजी के सेमेस्टर चल रहे हैं, तो कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे जाके। और ज्यादातर अतिथि विद्वान पूरा काम करते हैं, जो यूजीसी की नेट का जो अभी वो हुआ था नेक का निरीक्षण हुआ था, तो अतिथि विद्वानों की वजह से ही उनको ए ग्रेड और बी ग्रेड मिलती है जाके, जबकि परमानेंट प्रोफेसरों की वजह से नहीं मिल पाती है। उनको ज्यादातर कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, हाँ क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं, उनकी एपीआई स्कोर भी नहीं है। और अतिथि विद्वानों की एपीआई स्कोर 1200-1500 है, मेरे खुद का 1200 एपीआई स्कोर है। लेकिन इनको खुद को समझना चाहिए, सभी लोग इतना योग्यता रखते हैं उसके बाद भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहां से अपने बच्चों को कहां से है? और अगर योग्य नहीं होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद नहीं बोला था कि इनकी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के तहत होती है क्या? और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, लेकिन फिर भी ये मानते ही नहीं है। ये तो अपने दूसरे राज्य वालों को नौकरी देनी है, पीएससी का एग्जाम करा दिया, 4000 पदों की भर्ती निकाल रहे, अभी 2500 की निकाली और निकाल देंगे, क्या होगा इनका, ये कहाँ जाएंगे? तो हमने क्या डिग्री इसलिए ली थी क्या? और ये तो बच्चों का नुकसान तो हो नहीं है, इसका दुख हम लोगों को भी है, क्योंकि हमें तो कभी भी हटा दिया जाता है नौकरी से कि जाइए आप हटो, तो बच्चे भी क्या करेंगे जाके। बच्चों का पहले हम अपना भविष्य देखें या बच्चों का भविष्य बनाए, क्योंकि सरकार ने तो जब हमारा भविष्य नहीं बना पा रही है तो बच्चों का भविष्य तो वैसे बिगाड़ दिया है, तो उनका भविष्य कहाँ से बना पाएंगे? क्योंकि ये तो हर किसी को बेरोजगारी में देना, बेरोजगारी देना सब। और फिर ये कहते हमारे पास फंड नहीं है, तो अतिथि विद्वानों की वजह से ना फंड नहीं रहता है, हमारे कहीं सैलरी नहीं दी जाती, दो दो महीने दीपावली पे ही सैलरी नहीं दी, कम से कम 80% कॉलेज वालों को। यही सब चीज है सर, बहुत टेंशन में अतिथि विद्वान वैसे ही बहुत टेंशन में रहता है। ज्यादातर अतिथि विद्वान ने शोषणकारी व्यवस्था के कारण आत्महत्याएं कर ली थी सर, और कोरोना जैसी महामारी में।
जी सर, सर मेरा अंतिम सवाल यही है कि 2023 नया वर्ष लागू हुआ है, इस नए साल में नई उम्मीद के साथ हमें क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को?
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ नए साल पे कि आप हमारा अतिथि विद्वानों का निमित्तीकरण करें, क्योंकि हम अतिथि विद्वान बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं और आपसे ज्यादा हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता है, वो इसलिए क्योंकि आप हमारे धरना स्थल पर आए थे और आपने हमारी दुख और ये दर्द सब कुछ पता है, और आपको ऐसा भी ये नहीं है कि आपको हमारी कोई मतलब सब पता नहीं, हमारी सभी वेदनाएं आपको पता है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं पहले आप अतिथि विद्वानों का निमित्तीकरण करें, उसके बाद आप पीएफसी कराओ, कुछ भी कराओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो अतिथि विद्वान अभी वर्तमान में कार्यरत हैं और जो हमारे फॉलन आउट हैं उनको अंदर ले लो, और क्योंकि हमारे अभी 450-500 अतिथि विद्वान अभी वर्तमान में फॉलन आउट हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? इस उम्र में आपने उनको नौकरी से बाहर कर दिया है, पहले उनको आप अंदर लो और हमारे जो हम लोगों को सभी को निमित्त करो, यही हमारी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती करते हैं। और नहीं तो हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, मरने के अलावा नहीं तो आप हमें इच्छा मृत्यु दे दो, हम परिवार सहित मरने के लिए तैयार हैं, परिवार सहित
जी।
अगर आपको अगर इससे ही वो मिलता है तो हम परिवार सहित मरने के लिए तैयार हैं, और नहीं हमारा आप निमित्तीकरण करो, जो फॉलन आउट वालों को अंदर लेते हुए हमारा आप निमित्तीकरण करें। जी
जी सर, तो ये थे सुरजीत जी जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से ग्वालियर से नियमितकरण और अतिथि विद्वानों की जो भी व्यथा है उनको मोबाइल वाणी के साथ साझा किया, साथ ही जल्द ही उनकी मांग को लेकर इसको उनका संघर्ष कितने वर्षों से किस तरीके से सड़कों पर रहा है और इससे भविष्य बच्चों के भविष्य पर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, इस पर भी उन्होंने मोबाइल वाणी के साथ राय दी। सुजीत जी, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी थैंक यू, धन्यवाद जी, राम राम।
बड़ा वैलेंस सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।